सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे मेरे अभिन्न नौजवान दोस्तों, नमस्कार फ्रेंड्स। इस लेक्चर में मैं आप सबसे न्याय दर्शन के बारे में बात करने जा रहा हूं, जिसके संस्थापक हैं गौतम अक्षपाद। सच पूछे तो बहुत लोग एकदम कंफ्यूज्ड हो जाते हैं कि फिर न्याय दर्शन और वैशेषिक दर्शन में फर्क ही क्या है, और बहुत लोग इसे बिल्कुल एक ही मानते हैं। सामान्यतः काफी कुछ दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, और वैसे भी आपने देखा कि सांख्य दर्शन खुद वैशेषिक से मिलता है, वैशेषिक न्याय से मिलता है। क्योंकि अगर आप भौतिकवादी विचारधारा को लेकर के चल रहे हैं तो बातों में सिमिलरिटी मिलेगी ही, इसीलिए आपको इसके लिए बहुत चिंतित होने की जरूरत नहीं है। बस उसकी जो मूलभूत बातें हैं, जो मूलभूत अंतर है कह लीजिए, बस उसे पकड़े रखिए, फिर आप प्रश्नों के उत्तर आसानी से दे लेंगे और स्पष्टता से भी दे लेंगे। अदरवाइज फिर आपके उत्तर में आप यूं कह लीजिए कि जटिलता आने लगेगी, घालमेल होने लगेगा और एग्जामिनर बिल्कुल तुरंत पकड़ लेगा। दोस्तों, न्याय दर्शन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। आप न्याय प्रणाली के बारे में सोचिए, आप खुद ही सोचिए, मुझ पर मत जाइए। न्याय, जस्टिस, जस्टिस क्या होता है? और आप इंडियन सिचुएशन में ही सोचिए, एक न्यायालय है, उस न्यायालय में एक न्यायाधीश है, और न्यायाधीश का काम है न्याय प्रदान करना। किसको न्याय प्रदान करना? जो भी उसके यहां वादी प्रतिवादी आते हैं उनको न्याय प्रदान करना। और जब न्यायाधीश न्याय प्रदान करता है तो उसके लिए वो कौन से टैक्टिस, टेक्निक, तकनीक अपनाता है? न्यायाधीश कैसे फैसला सुनाता है, कैसे न्याय देता है? उसके पूरे के पूरे न्याय के केंद्र में अगर मैं पूछूं कि कौन सी बात सबसे प्रमुख होती है, सबसे प्रमुख बात, देखिए किसको क्या दंड दिया जाना है, क्या सजा मिलनी है, किस तरह के अपराध पर क्या क्या सजाएं मिलनी है, उसके बारे में तो नियम कानून बने हुए हैं, वहां उसकी अपनी कोई गुंजाइश नहीं है। सबसे पहले तो उसे यही पता लगाना होता है, या यूं कह लीजिए प्रमाणित करना होता है, कि जो सजा दी जा रही है वह सही सजा दी जा रही है, यानी कि इस व्यक्ति ने अपराध किया है, इसका फैसला करना होता है, निर्णय लेना होता है। और वह इसका फैसला करता कैसे है? आप कहेंगे कि इसका फैसला करता है वो बहस के दौरान, तो बहस के दौरान वो क्या पूछता है? पकड़ने की कोशिश करता है, वकील दोनों आप एक दूसरे से बहस कर रहे हैं कि उसमें से कुछ पता लग जाए, यानी कि वाद विवाद, वाद विवाद, राइट? न्यायाधीश सुनता रहता है और उसमें से पकड़ता रहता है, बीच बीच में न्यायाधीश इंटरफेरेंस करता है कि नहीं नहीं ठीक है, आप बताइए, आप ये जो कह रहे हैं इसका क्या प्रमाण है आपके पास, यानी कि फिर वह प्रमाण मांगता है, प्रमाण मांगता है। और जब किसी बात के प्रति वह कन्विंस हो जाता है तो अकॉर्डिंगली फिर वह अपना फैसला सुना देता है, यही है। दोस्तों, यदि आप मेरी इस बात के आधार पर पूरे न्याय दर्शन को पढ़ेंगे तो चीजें बहुत स्पष्ट होती चली जाएंगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। उदाहरण के तौर पर कुछ लोग ये कहते हैं कि जो न्याय दर्शन है मूलतः ज्ञान का दर्शन है, या यूं कह लीजिए कि ज्ञान के अन्वेषण पर केंद्रित दर्शन है। ज्ञान से जुड़ी हुई जितनी समस्याएं हैं उन समस्याओं की खोज करने वाला दर्शन है। मैं आपसे जो बात कह रहा हूं वो मेरा ज्ञान हो सकता है, आप अपनी बात किसी से कह रहे हैं तो वो आपका ज्ञान हो सकता है, लेकिन जरूरी तो नहीं है कि जो आपका ज्ञान है या जो मेरा ज्ञान है वो सही ही हो। तो सही की तो आपको खोज करनी पड़ेगी, तो सही की आप खोज कैसे करेंगे? सही की खोज करने के लिए आप सार्वजनिक रूप से वाद विवाद करेंगे, जो न्यायालय की बात मैंने कही, अब आप उसे सार्वजनिक रूप से ले लीजिए कि सार्वजनिक रूप से वाद विवाद किए जाएंगे। इसलिए कुछ लोग ये मानते हैं कि जो न्याय दर्शन का जो जन्म हुआ है वह मूलतः सार्वजनिक वाद विवाद के पद्धति से हुआ है, कि लोग बिल्कुल बैठ करके बहस कर रहे हैं और उसमें से निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ क्या सही हो सकता है, इसमें क्या गलत हो सकता है, इसमें क्या सुधार होना चाहिए। तो दोस्तों, इसे कहा गया न्याय दर्शन। अब आप देखें कि न्याय दर्शन में, मैंने कहा शुरू में ही कहा कि वैशेषिक दर्शन से बहुत साम्य है। तो क्या साम्य है? बहुत सी बातें आप कह सकते हैं कि यह प्रमाण को बहुत महत्वपूर्ण मानता है, यह जो ब्रह्मांड का जो विकास हुआ है वो मानता है कि अणु परमाणु की क्रिया और प्रतिक्रियाओं से हुआ, यानी कि उनके आपस में मिलने से, एक्शन इंटरैक्शन से ही हुआ है। यह पूरी तरह से एक भौतिकवादी दर्शन है। यह इस बात को मानता है कि ये जो ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है इसके पीछे किसी ईश्वर का हाथ नहीं है, किसी अलौकिक शक्ति का हाथ नहीं है, बल्कि सीधे सीधे जो पांच मूलभूत तत्व हैं जिसे हम क्षिति जल पाव गगन समीरा के नाम से जानते हैं उसी से इसका निर्माण हुआ है। स्पष्ट रूप से यह बात कहता है। देखिए, शुरू में मैंने कहा कि यह ज्ञान के अन्वेषण का दर्शन है, ज्ञान के अन्वेषण की बात करता है। जब हम ज्ञान के अन्वेषण की बात करते हैं तो आप ज्ञान को लाते कहां से, कैसे आपको मिलेगा ज्ञान, इसमें बहुत विस्तार के साथ इसके बारे में बताया गया है। आप सोच करके देखिए कि आपको ज्ञान कहां से मिलता है। सामान्य तौर पर तो हम लोग कह ही देते हैं कि स्कूल जाते हैं या फिर किताबें पढ़ लेते हैं, किसी का लेक्चर सुन लेते हैं, तो वहां से हमें ज्ञान मिल जाता है। इसे दर्शन की भाषा में या न्यायिक दर्शन की भाषा में कहा गया प्रत्यक्ष संपर्क, प्रत्यक्ष ज्ञान। यानी कि जब आप किसी वस्तु के, किसी घटना के प्रत्यक्ष रूप से संपर्क में आते हैं तो आपको उसका ज्ञान प्राप्त होता है, और इसे उन्होंने ज्ञान प्राप्त करने का सर्वोत्तम माध्यम माना, क्योंकि आप देख रहे हैं, यानी कि आपका अनुभव जन्य ज्ञान है, आप देख रहे हैं, उसमें किसी तरह के मिलावट की गुंजाइश नहीं है। तो जो प्रत्यक्ष ज्ञान होता है उसे इन्होंने सर्वोत्कृष्ट ज्ञान माना, और यह ज्ञान मिलता है आपको किसी वस्तु के सीधे सीधे संपर्क में आने से। दूसरा ज्ञान, इन्होंने कहा कि अनुमान के आधार पर भी ज्ञान की प्राप्ति होती है। हम हर चीज का सीधा ज्ञान तो नहीं प्राप्त कर सकते, तो फिर क्या होता है कि हम अनुमान लगा लेते हैं कि अच्छा ऐसा हुआ होगा, अच्छा ऐसा होता होगा। लेकिन देखिए, होता होगा, हो सकता है, हुआ होगा, तो ये सब अनुमान पर आधारित हैं और ये शुद्ध ज्ञान नहीं है, क्योंकि यहां गलत हो जाने की पूरी पूरी आशंका है, संभावना है। तीसरा, इन्होंने कहा उपमान ज्ञान। उपमान ज्ञान का मतलब है कि तुलना करना। हमें दो वस्तुओं के बारे में पहले से ही उनकी तुलना मालूम है। जैसे आपको अगर पानी और आग की तुलना की जाए तो पानी और आग के बारे में आपको पहले से मालूम है, पानी ठंडा होता है, आग गर्म होता है, ये पहले से मालूम है। तो जो पहले से ही मालूम है लेकिन तुलनात्मक आधार पर मालूम है उसे इन्होंने कहा उपमान ज्ञान, राइट। अब आप देखिए कि सिर्फ ज्ञान की ही बात कर रहे हैं, क्योंकि ज्ञान के माध्यम से ही आप वस्तुओं के गुण को जान सकते हैं। सांख्य दर्शन ने भी यही कहा, और वैशेषिक दर्शन तो खासकर ये कहता है कि अगर आप उसके अणु के चरित्र को जान लेते हैं तो आप उसके बिल्कुल सही चीजों को जान लेंगे। तो यहां भी ज्ञान ही है। तो ये जो मैं आपको अभी बता रहा हूं कि फिर वो ज्ञान का आधार क्या है, कैसे आप जानेंगे। तो तीन आधार हमने देखे कि प्रत्यक्ष संपर्क के द्वारा, फिर अनुमान के द्वारा, और फिर उपमान के द्वारा। इसी के तहत उन्होंने एक बात और कही है दोस्तों, और इसे आप बिल्कुल लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इसमें निरीक्षण का बड़ा योगदान है। जब हम प्रत्यक्ष संपर्क की बात कर रहे हैं तो प्रत्यक्ष संपर्क का मतलब क्या हुआ, आप उसे देख रहे हैं, उसका निरीक्षण कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने यहां एक बात कही कि यदि मस्तिष्क अशांत है और किसी अन्य विषय पर केंद्रित है, देखिए यदि मस्तिष्क अशांत है और किसी अन्य विषय पर केंद्रित है तो आपके निरीक्षण में गलतियां हो सकती हैं। कैसा नहीं है, आप पढ़ रहे हैं और आपका दिमाग कहीं और चला जाता है। जब दिमाग कहीं और चला जाता है तो क्या होगा, आप जो पढ़ रहे हैं वो सही सही ग्रहण नहीं कर सकेंगे। तो ये न्याय दर्शन कह रहा है। और फिर एक बात उन्होंने और कही, मुझे लगता है कि इसे आप अपने सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन पर लागू कर सकते हैं। उन्होंने ये कहा कि जब हमें किसी भी वस्तु का सही सही ज्ञान हो जाता है कि ये वस्तु ऐसी है, तो मान करके चलिए कि हमें सफलता मिलनी निश्चित है, हमें सफलता मिलेगी, हम दुखी नहीं होंगे, हमारी जो अभीष्ट इच्छा है यानी कि जो हम मान करके चल रहे हैं वो पूरी हो जाएगी, बशर्ते कि हमें उस वस्तु के बारे में सही सही ज्ञान हो, राइट। इसे आप अपने सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन पर लागू करके देखिए। क्योंकि मैं दर्शन शास्त्र को जीवन से जोड़ करके ही बताने की कोशिश कर रहा हूं। आप सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इस बात का ज्ञान होना चाहिए बहुत अच्छे तरीके से कि तैयारी की कैसे जाती है। अगर आपको ये ज्ञान नहीं है कि तैयारी की कैसे जाती है तो फिर ये दर्शन कहता है, न्याय दर्शन, कि आपका असफल होना निश्चित है और आप निश्चित रूप से दुखी होंगे। इसका मतलब है कि जो हमारा दुख है उसका जो मूल कारण है ज्ञान का अभाव है। गौतम बुद्ध ने क्या कहा था, इच्छाओं की उत्पत्ति है। एक इच्छा पूरी हुई फिर दूसरी इच्छा पूरी पैदा हो गई फिर तीसरी इच्छा पैदा हो गई और इस तरह से हम दुखी होते रहते हैं। ये कहते नहीं, न्याय दर्शन का कहना है कि ज्ञान का अभाव हमारी असफलताओं और हमारे दुखों का सबसे बड़ा कारण होता है। इसीलिए जब हम किसी भी वस्तु के बारे में किसी भी घटना के बारे में सही सही जान लेते हैं, ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, और फिर आप देखेंगे ज्ञान कैसे प्राप्त करेंगे, कार्य कारण संबंधों के आधार पर, फिर ये उसी तरह से आपके सांख्य दर्शन और वैशेषिक दर्शन से जुड़ जाता है, तब आप सफल निश्चित रूप से होंगे। दोस्तों, एक जो बड़ी मजेदार बात इन्होंने कही है और मैं यहां खासकर आप सबको बताना चाहूंगा कि इन्होंने आत्मा के बारे में बात की है। कभी कभी हो सकता है कि प्री एग्जामिनेशन में इस तरह के प्रश्न पूछ लिए जाए, लेकिन ये आत्मा कहते किसको है? आपको ध्यान होगा इससे पहले मैंने आपसे बात करते हुए कहा था कि जो उपनिषद है वो बहुत से उसमें से ऐसे दर्शन शास्त्री हैं जिन्होंने चेतना को आत्मा कहा कि हमारी जो चेतना है वही आत्मा है। न्याय दर्शन क्या कह रहा है, देखिए कि आत्मा के लक्षण क्या हैं। अगर मैं वैसे आपसे पूछूं तो आप आत्मा के लक्षण नहीं बता सकेंगे क्योंकि ये तो अजर अमर है, इसे ना कोई जला सकता है ना सुखा सकता है, ना ये गीला होता है ना ये सूखता है, गीता में यही बात कही गई है। लेकिन ये आत्मा के लिए क्या कहते हैं, इसके लक्षण हैं अभिलाषा यानी कि इच्छाएं, घृणा, आनंद, दुख, लिप्सा, द्वेष, ये सब के सब इसके लक्षण हैं आत्मा। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ये सब कहां उत्पन्न होती है तो आप क्या कहेंगे, मन में, मस्तिष्क में, दिल में, इन सब में ही यह ये सारी बातें उत्पन्न होती हैं, पैदा होती हैं। तो सीधी सी बात है कि अब यहां आत्मा कोई अलग से आपको दिखाई नहीं दे रही, आप अपने मन को आत्मा कह लीजिए, आप अपने मस्तिष्क को आत्मा कह लीजिए, आप अपने हृदय को आत्मा कह लीजिए, लेकिन आत्मा का जो अमर अजर अनश्वर जो स्वरूप बताया जाता है इस तरह की कोई बात ये स्वीकार नहीं करते। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि न्याय दर्शन के बारे में काफी कुछ आपको जानकारी हो गई होगी, और केंद्रीय बिंदु के रूप में कहें तो आप कह लें कि यह जो दर्शन शास्त्र है यह मूलभूत रूप से प्रमाण को बहुत ज्यादा महत्व देता है, दैट्स ऑल। तो दोस्तों, अब इसके बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं, ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूं, और मैं चाहूंगा दोस्तों कि आप दर्शन शास्त्र के बारे में जो भी बातें की जा रही हैं उस पर ज्यादा से ज्यादा मुझे अपना फीडबैक दें ताकि मैं अपने आप को ज्यादा से ज्यादा आप लोगों के लायक बना सकूं, और यही मेरे जीवन का अब एकमात्र अंतिम उद्देश्य रह गया है। तो आप मुझे इजाजत दें, नमस्कार।